نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمين يا رب العالمين. دیکھتے ہیں تفسیر آیت نمبر 14 سے 22 تک سورۃ آل عمران. جیسے کہ ہم پہلے بات کر رہے تھے پچھلی آیت میں کہ کس طرح سے مشرکین مکہ نے یعنی معرکہ بدر کے لیے انہوں نے بڑا کچھ دیا اپنا مال تاکہ مسلمانوں سے مقابلہ کیا جائے، تو ان میں سے کوئی چیز بھی بتا دیا گیا تھا کہ ان کے کام نہیں آنے والی. اور اس آیت میں عبرت کی تفسیر سمجھ لیں. یار پچھلی آیت میں نا کہ عبرت ہے لوگوں کے لیے، جو اہل بصیرت ہیں، جو نظر رکھتے ہیں ان کے لیے عبرت ہے. یہاں پہ آپ کو پتہ چلے گا کہ عبرت کیسی عبرت. یہ دنیا کی عارضی لذتوں میں انسان اتنا کھپ جاتا ہے کہ آخرت کی ہمیشہ کی نعمتوں سے غافل ہو جاتا ہے. تو یہ ان کی حقیقت کیا ہے جو یہاں کی یہ چیزیں. اسی طرح میں نے آپ کو بتایا تھا لاسٹ ٹائم کہ ایک نصرانی جو تھا، ان کا بڑا جو تھا ابو حارثہ، اس نے اپنے بھائی سے کیا کہا تھا کہ مجھے تو یقین ہے کہ یہ اللہ کے برحق رسول ہے، لیکن اگر میں ان پر ایمان لے آؤں تو روم کے بادشاہ مجھ سے اپنا سارا تعلق توڑ لیں گے، مال و دولت واپس لے لیں گے. یہ جو اتنا تم دیکھ رہے ہیں لوگ میری تعظیم کر رہے ہیں، کوئی میری تعظیم نہیں کرے گا. تو اب بتا دیا گیا یہ دنیا کی چیزیں یہ تو فانی ہیں، اللہ کے پاس بڑا اجر ہے. تو تم فانی چیزوں کی خاطر ہمیشہ کی چیزوں کو چھوڑ دو گے. یعنی یہ بیک گراؤنڈ میں آپ کو ریلیشن شپ بتا رہی ہوں کہ پچھلی اس کے ساتھ کیا اس کا تعلق جوڑا ہے آگے کی بات کا. تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا بتایا. زینا، خوبصورت بنا دی گئی، مزین کر دی گئی، لناس لیے لوگوں کے. ناس میں کون کون آتا ہے؟ سب لوگ، چاہے کافر ہے، مومن ہے، بڑا نیک پرہیزگار ہے، لیکن سب کے لیے خوبصورت بنا دی گئی. کیا؟ حب، محبت، الشہوات، خواہشات کی. یعنی خواہشات سے محبت کرنا ان کو اچھا لگتا ہے، یہ نہیں کہ ان چیزوں سے، چیزوں تو بات کی بات ہے، ان کی خواہش کرنا بھی ان کو اچھا لگتا ہے. ان کی باتیں کرنا، ان کے خواب دیکھنا، ان کو ڈسکس کرنا، ان کو دیکھ دیکھ کے خوش ہونا، چاہے کہیں پہ بھی دیکھ لیں، ضروری نہیں کہ ان کے پاس ہی یہ چیزیں ہوں تو ان کو اچھا لگتا ہے، ان کی خواہش بھی اچھی لگتی ہے. یعنی فرق ہے چیز کے اچھا لگنے میں اور اس کی خواہش سے محبت. یعنی کوئی چیز اتنی عزیز ہے کہ اس کی خواہش کرنا بھی ایک، جیسے وہ کہتے ہیں نا سپنے دیکھتے ہیں، اس کے بھائی خواب دیکھنا، اس کے ڈریم اباؤٹ اٹ، تو وہ اس کی ڈریم بھی اچھی لگتی ہے، اتنی وہ خوبصورت بنا دی گئی ہے. جیسے مثلا کھانے، کئی لوگوں کو بہت پسند ہوتے ہیں، اس کا ان کا مشغلہ ہی کھانا کھانا ہوتا ہے، اور بس کہاں سے اچھا کھانا مل جائے. اور اس کی خواہش سے محبت کیا ہے کہ انسان جب دوسرے سے بات کرے تو کھانے کی باتیں شروع کرتے اور اس میں ہی چٹخارے لے، اور اس میں بھی بڑا مزہ آئے ڈسکس کر کے، کیونکہ وہ چیز اچھی لگتی ہے نا، تو اس کی محبت بھی مزین کر دی گئی، اس کی محبت بھی اچھی لگتی ہے. کتنا مزہ آ رہا ہے یہ ڈسکس کرنے میں، کتنا مزہ آ رہا ہے یہ دیکھنے میں. آپ دیکھیں گے کئی لوگوں نے کھانے نہیں بنانے ہوتے، لیکن وہ دیکھتے رہتے ہیں کوکنگ شوز. اب وہ اس کے اندر ہی لذت ہے، اب ان کو کچھ مل رہا ہے اس میں؟ کچھ نہیں، وہ نہ کبھی انہوں نے بنانے. لیکن دیکھیے کئی چیزیں کی، کئی خواہشات کی جو محبت ہے نا، وہ بھی انسان کو اچھی لگتی ہے، اس محبت سے محبت ہے ان کو، یہ مزہ آتا ہے اس کے اندر، اس خواہش کو کر کے. اور خواہشات بہت ساری ہو سکتی ہیں، مگر یہاں پر چھ کہہ لیں یا سات کہہ لیں، اگر ذہب اور فدا کو آپ الگ الگ کریں تو سات ہو گئیں، اگر ایک ہی رکھیں تو چھ ہو گئیں. तो ये कुछ लिस्ट दिया अल्लाह ताला ने कि कौन सी वो चीज़ें हैं जो कि इंसानों को बहुत उनकी मोहब्बत भी जो है ना वो उनको बहुत प्लेजेंट इफेक्ट देती है, बहुत अच्छी लगती है उनको, उनके लिए बड़ी अट्रैक्टिव है। अगर मोहब्बत अट्रैक्टिव है तो सोचिए वो चीज़ कितनी उनके लिए उनको अच्छी लगती होगी, कितनी खूबसूरत होगी। और उन ख्वाहिशात में पहली ख्वाहिश है मिनन निसा, औरतों में से, यानी औरतों की मोहब्बत को मुजय्यन कर दिया गया। ये मर्दों के लिए खास तौर पे है कि मर्द के लिए सबसे पहली चीज जो उसके दिमाग पे छाई रहती, चाहे उसके घर में बीवी हो भी और कितनी ही हसीन बीवी हो, फिर भी उसको कोई और औरतें हैं जिनके ख्यालात आते हैं, जिनके जिनको सोच के भी उसको अच्छा लगता है, जिनसे वो अट्रैक्ट होता है। और खास तौर पे आज के दौर में जहाँ पे तो हर तरफ ये फितना मौजूद है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फितना फरमाया था कि मैं अपने बाद तुम्हारे लिए सबसे बड़ा फितना औरत का छोड़ के जा रहा हूँ। ये मर्दों की जो अक्ल है ना वो मारी जाती है। आप देखें बड़े बड़े कई ऐसे लोग होते हैं जिनके स्कैंडल्स निकल आते हैं, कई आपको पता है, कई प्रेसिडेंट्स, कई और बड़े बड़े वज़रा, ये उनके स्कैंडल्स कहाँ निकलते हैं? औरतों के पीछे ये मसले होते हैं, या माल होता है, वो भी आगे बात आ रही है। तो वो इतने बड़े ओहदे पे होते हुए भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते, अपने इस ख्वाहिश के अंदर बह जाते हैं। तो आदमी के बैक ऑफ माइंड में ये चल रहा होता है, वो कहे कितनी भी एज का हो जाए, शादीशुदा हो जाए, गैर शादीशुदा है, लेकिन औरतें मर्दों के लिए एक बहुत बड़ी अट्रैक्शन है। और इस ख्वाहिश की मोहब्बत, इसीलिए चार बीवियों की भी इजाज़त दी गई, इसीलिए वहाँ पे भी हूरों का कहा गया जन्नतों में, क्योंकि ये आदमी को बहुत मरगूब चीज़ है। जितना कि औरत मर्द की तरफ अट्रैक्ट होती, इससे ज़्यादा, इससे कहीं ज़्यादा मर्द औरत की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो औरतों की जो मोहब्बत है वो तो रखी गई, लेकिन इस ख्याल की, इस मोहब्बत को भी मुजय्यन कर दिया गया ख्वाहिशात में से। ख्वाहिशात देखे ना, मैंने आपको बताया कि ख्वाहिशात बहुत सारी इंसान की विशेज हो सकती, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, लेकिन उनमें ये टॉप पे है। ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो एक औरत के बारे में फरमाया कि दुनिया जो है उसकी बेहतरीन मता नेक औरत है, यानी दुनिया की बेहतरीन जो फायदे की चीज है ना वो नेक औरत है। यानी औरत से इस तरह उसके ख्याल से मोहब्बत करना या औरत से मोहब्बत करना कोई बुरी चीज नहीं है, मगर ये सारी जो आपको लिस्ट दी जा रही है ना, ये इसको कंडेम नहीं किया जा रहा कि ये हराम है, आपने नहीं इनसे मोहब्बत होनी चाहिए। मैं आपको बताऊंगी एंड में कि क्यों जरूरी है ये। अल्लाह ताला ने मुजय्यन जो किया है उसमें हिकमत है उसकी, मगर समझने की बात जो ये है वो ये कि बाज दफा यही मोहब्बतें जो है ना, इन चीजों की ख्वाहिश की भी मोहब्बत इतनी इंसान पे गालिब आ जाती है कि अल्लाह, आखरत, दीन, नेकी, भलाई, ये सब पीछे रह जाता है। और यही वो चीजें हैं जिनके लिए इंसान हराम रास्ते भी इख्तियार करता है। यानी औरत की मोहब्बत उसके अंदर इतनी है, उसकी वो ऐसा उसको ड्रीम करता है कि उसी के पीछे बाज दफा जिनाम कर बैठता है, गलत रिलेशनशिप्स में पड़ जाता है, ऐसा है ना। तो ये अल्लाह ने मुजय्यन की भी है, लेकिन उसको हदूद में रहना जरूरी है। ये सारी चीजों की मोहब्बत जो आगे लिस्ट आ रही है ना, इन सब के साथ याद रखिए कि ऐसे हैं ये, समझ लें कि जैसे आपके पास एक बड़ी जबरदस्त गाड़ी है, गाड़ी आपकी जरूरत है, आपका काम करती है, लेकिन सोचें अगर गाड़ी में ब्रेक ना हो तो क्या होगा? तबाही है, हलाकत है उसके लिए जिसकी वो गाड़ी है। इसी तरह ये चीजें हैं, ये इंसान की जरूरत है, लेकिन अगर ब्रेक ना लगाई, अपने आप को कंट्रोल ना किया, तो यही चीजें इंसान को तबाह कर देती हैं, कबीरा गुनाहों में मुब्तला कर देती हैं। इसीलिए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने अपने बाद औरतों से ज्यादा नुकसानदेह फितना नहीं छोड़ा, नहीं, बहुत बड़ा फितना है ये आदमी के लिए। और ये भी फरमाया कि ये बहुत ज्यादा होशियार मर्द की अकल को भी सल्ब कर देती है। वल बनीन, और बेटों की, बाज ने कहा इससे मुराद औलाद है और इसमें बेटियां भी शामिल हैं, क्योंकि हमेशा गालिब जो होता है उसका जिक्र कर दिया जाता है और उसके अंदर दूसरा भी शामिल होता है। इसकी बेहतरीन मिसाल है वालिदैन। वालिदैन का मतलब दो वालिद, तो वालिदैन में माँ भी तो आती है, वो तो वालदा है, लेकिन वालिदैन कह के वालिद और वालदा दोनों आ गए उसके अंदर। इसी तरह बनीन कह के उसमें बेटियां भी आ गई, और बाज ने इसको सिर्फ बेटे लिया। ये जो बेटों की भी मोहब्बत होती है, शायद जिन जो अभी शादीशुदा ना हो वो इतना इस बात को ना समझ सके, लेकिन जिनकी शादियां हो जाती हैं सबसे पहले ये ख्वाहिश होती है कि बेटा हो जाए। और बाज़ दफ़ा बेटों के लिए औरतें क्या क्या नहीं, किस किस चीज़ों से नहीं गुजरती, किन किन बाबों से नहीं रुजू करती, किन किन दरगाहों पर नहीं जाती, अपना ईमान तक बेच देते हैं लोग कि बेटा हो जाए बस। या औलाद भी अगर आप इसको लेंगे, बेटे बेटियां, तो औलाद के लिए। ये भी वो ख्वाहिश होती है जिसकी मोहब्बत इंसान के लिए खूबसूरत बना दी गई। इंसान को ये शादी होते ही सबसे पहले ये होता है कि मेरे औलाद हो या मेरा बेटा हो जाए। और ये भी बुरी चीज नहीं है, अंबिया ने भी अपने लिए बेटों की दुआएं मांगी हैं। मगर बुराई क्या है, जिस वक्त के बेटे के पीछे या औलाद के पीछे इंसान उन कामों में पड़ जाता है जो जायज़ नहीं है, जो हराम है, बाज़ दफ़ा हराम कमाइयों में पड़ जाता है, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि औलाद के मुंह से निकली हुई बात इंसान के लिए इतनी बड़ी होती है कि वो कहता है कि बस मेरे बच्चे ने कह दिया, मैं बच्चे की बात तो नहीं टाल सकता, मेरा बच्चा इस चीज़ के ऊपर खुश हो जाता है तो कोई बात नहीं, मैं कर जाऊंगा ये। या बच्चा कोई ऐसी ख्वाहिश कर देता है तो इंसान कहता है मैं बच्चे की कोई कैसे ना करूं, उसका दिल टूट जाएगा, और उसके पीछे चाहे उसको कितना भी कोई गलत काम करना पड़े। आप देख लें, बच्चों की ही जिदों के पीछे और बच्चों की ही डिमांड्स के पीछे कई दफा आप अपने आप को देखें, जो अभी माएं बैठी हैं, कई दफा आपने वो काम किए होंगे जो आपका दिल नहीं चाहता करने का, लेकिन बस क्या करें, बच्चे जिद कर रहे थे, क्या करें, बच्चे ये कहते हैं। तो कितना इंसान बच्चों के कहने पर चलता है ना, तो यही औलाद, हाँ, सदका जारिया भी बन सकती। जैसे औरतें हैं ना, वो बेहतरीन मता भी हैं इंसान के दीन में, उसके साथ चलने वाली, उसके दीन में उसकी मददगार भी हो सकती है। लेकिन दूसरी तरफ फितना भी है, इसी तरह औलाद भी है। तो ऐसा नहीं, इस बात को समझिएगा, ऐसा नहीं समझिएगा कि ये बुरी चीजें, मगर ये जरूर समझिएगा कि इनके एक पहलू, ये नेमते हैं जरूर, इनका एक पहलू वो भी हो सकता है जो इंसान के लिए तबाही बन जाए, और एक तरफ ये कितना बड़ा अजर का सामान भी बन सकती है, क्योंकि अट्रैक्शन बहुत है ना इनमें, तो अक्सर इनकी वजह से इंसान ठोकर खाता है, इनकी वजह से इंसान गिरता है जिंदगी में। ये चीजें होती हैं जो इंसान को, वो अच्छा भला होता है, लेकिन इनकी जो अट्रैक्शन इतनी ज्यादा होती है कि इंसान अपने आप पे काबू नहीं कर पाता, और इनके पीछे कई हराम काम भी कर जाता है, अल्लाह की नाफरमानियां भी कर जाता है। और तीसरी चीज क्या अट्रैक्टिव बनाई गई, खूबसूरत बनाई गई, वल्कनातीर अल्मुकंतरती मीन अज़्ज़हबी वल्फिद्दती, और खजाने जो इकट्ठे किए गए सोने में से और चांदी से, खजानों की मोहब्बत, यानी इंसान कहता है मेरे पास और हो, माल माल। खजाने क्या हैं? आज के दौर में करेंसी नोट आ गए, पेपर मनी है। पहले वक्त में क्या होता था? दिरहम और दीनार। दीनार क्या था? सोने का सिक्का। दिरहम क्या था? चांदी का सिक्का। और उनके ढेर अच्छे लगते थे, क्योंकि वो उस वक्त थे ना करेंसी, वो उस वक्त माल थे, वो बहुत हो, ज्यादा हो, और ज्यादा हो। इंसान कहता है एक जॉब करूं, फिर दूसरी कर लूं, फिर तीसरी कर लूं, एक बिजनेस है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, यानी हत्ता के वो अपने आप में इतना उसको इन्वॉल्व कर लेती हैं वो चीजें कि इंसान के पास अल्लाह के लिए भी वक्त नहीं रहता। ये माल की जो मोहब्बत है, इसीलिए तो कहा गया ना कि इंसान के लिए क्या फितना है। अल्लाह ताला ने फरमाया, अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह, ऐ ईमान वालों, तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद तुम्हें अल्लाह के जिक्र से गाफिल ना कर दे। इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, तुम्हारे माल और औलाद फितना है। फितने का मतलब वो नहीं जो उर्दू में फितना लेते हैं, ये फितना परदाज है, ये फलाना फितना, नहीं। फितने का अरबिक में मतलब होता है आजमाइश, ये इम्तिहान है तुम्हारे, इसके जरिए अल्लाह तुम्हें टेस्ट करता है। तो औलाद भी फितना है, माल भी फितना है। अलहाकुम तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, कसरत की चाहत ने इंसान को गाफिल कर दिया, और वो इंसान को फिर समझ ही नहीं आती कि अल्लाह के लिए वक्त कब निकालना। इंसान को फिर याद ही नहीं रहता खुदा, वो इतना इनमें खो जाता है। हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, हत्ता कि तुम कब्रों तक पहुंच जाओगे। ये हविस जो होती है ना, उसकी खत्म नहीं होती। जैसे हदीस में आता है कि इंसान के पास एक वादी सोने की हो, वादी पूरी वैली सोने की हो, फिर भी वो कहता है एक और होनी चाहिए, और उसका पेट कब्र की मिट्टी के सिवा और कोई चीज नहीं भरती। आप देखें जो अमीर लोग हैं, क्या वो आराम से बैठ जाते? नहीं, अब वो इतना हमारे पास है तो और होना चाहिए। एक घर है तो दूसरा होना चाहिए, दूसरा है तो तीसरा होना चाहिए। पहले जब इंसान छोटे घर में रहता है तो वो सोचता है बस मुझे इतना मिल जाए ना, तो इतना मेरे लिए बस बहुत काफी है। जब उतना मिल जाता है तो नहीं, इससे अब ज्यादा होना चाहिए। फिर उतना मिल जाता है तो उससे ज्यादा होना चाहिए। कभी जो स्टार्टअप करते हैं अपने लाइफ, उन बच्चों से पूछें जो यंगस्टर्स होते हैं, पहले वो थोड़े को भी कहते हैं ये जॉब मिल गई ना इतने की, वाह बहुत बड़ी बात है, ये तो बहुत मुझे मिल गया। लेकिन वो उस पे तो नहीं ये कायम रहते, इससे अब ज्यादा, इससे अब ज्यादा, उससे अब ज्यादा, फिर मुकाबले भी होने लगते हैं, फिर फलाने से भी ज्यादा होना चाहिए। तो ये मौत तक इंसान की ये ख्वाहिश नहीं खत्म होती, और ये भी उसके लिए मुजयन कर दिया गया। वो ख्वाब देखता है ना इतने हो जाए। क्यों हम शेख चिल्ली की कहानी पढ़ते हैं, वो सुनी होगी सबने, शेख चिल्ली ने ऐसे करा ऐसे करा, क्या है वो जस्ट ड्रीमिंग, ये हो फिर उसके बाद ऐसे हो जाए, फिर ये ऐसे हो जाए, फिर वो हो जाए, वो ख्वाबों में कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है। तो इसके ख्वाब देखने भी अच्छे लगते हैं, मेरे पास इतना पैसा हो जाए, फिर मैं ये करूं, फिर मैं आराम से बैठ के खाऊं, फिर मैं फलाना करूं, ये है ढेर खजाने। और ये ना सोचेंगे सोने की मोहब्बत सिर्फ औरतों के अंदर, मैंने बताया कि यहाँ पे सिर्फ वो जेवरों की बात नहीं आ रही, जेवरात का नहीं कहा गया, जेवर का लफ्ज नहीं आया, सोने और चांदी के ढेर का आया, जो कि बेसिकली किसको डिपिक्ट करता है, माल को, कि ज्यादा माल हो, कसरत हो माल की, क्योंकि उस जमाने में यही माल था। और इवन आज आप देखें लोग इन्वेस्टमेंट्स करते हैं गोल्ड में, कहते हैं पेपर मनी तो अकलमंदी की बात है ना, ये पेपर मनी करके तो इन्होंने हमें बेवकूफ बनाया हुआ है, जो डी वैल्यू होता रहता है, वो सोने के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, सोना खरीद खरीद के रखते हैं। तो ये कमोडिटीज हैं जो इंसान को, फिर ये सोना ये चांदी, इनके ऊपर जकात भी है, इंसान इनसे भी फारिग हो जाता है, कि अब जकात भी नहीं पे की जाती, कैसे जकात पे करूं। यही इंसान को इतने गाफिल कर देते हैं कि उसको अपने वक्त का पता ही नहीं चलता, वक्त कहाँ चला गया। तो माल को खैर भी कहा गया, अल्लाह का फजल भी कहा गया, क्योंकि माल होगा तो इंसान दूसरे के आगे हाथ फैलाने से महफूज रहेगा, माल होगा तो इंसान मोहताजी से महफूज रहेगा, अपनी जरूरियात पूरी कर सकेगा। और जब माल नहीं होता तो बाज दफा फकरो फाका इंसान को, फकरो फाका हर एक के बस की बात नहीं होती, इसको बर्दाश्त करना। आपको पता है हदीस में आता है कि बाज फकरो फाके से जो पनाह मांगी गई, कि बाज फकरो फाका इंसान को कुफर तक पहुंचा देता है, वो काम कर लेता है, क्योंकि मैं इससे गेट रिड ऑफ हूं फकरो फाके से। तो इसलिए जो ढेर हैं माल के, ये जहाब और फिदा के, ये भी इंसान के लिए अट्रैक्टिव बना दिए गए, इसकी मोहब्बत को। ये क्यों बनाए गए, ये अब एकदम सवाल जहन के अंदर आता है, फिर क्यों ऐसा किया गया, ये तो नहीं होना चाहिए था, फिर क्यों अल्लाह ने बनाए फिर हमारे लिए, कि हम अगर इसमें इतना खो सकते थे, गाफिल हो सकते थे। इसकी हिकमत अभी बताती हूँ। वल खैल मुसव्वमती, और घोड़े जो निशान लगे हुए, निशान लगे हुए घोड़े, पहले जमाने में क्या होता था, ऐसे घोड़े होते थे जैसे मतलब घोड़ों की भी तो नस्लें होती हैं ना, घोड़ों के भी तो ब्रांड्स होते हैं, तो कोई ऐसे निशान वाले घोड़े वो ज्यादा उम्दा घोड़े समझे जाते थे, जिनकी निशानी लगा दी जाती थी। तो उस जमाने के लिए घोड़े थे। वैसे तो घोड़े के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि घोड़े की पेशानी से ना खैर बांध दी गई है, कब तक? कयामत तक, यानी कयामत तक घोड़े के अंदर खैर रहेगी, इंसान को फायदा पहुंचाता रहेगा। इतना जबरदस्त ये एक सवारी है। और आज भी देखें लोग घोड़े रखते हैं अपने फखर के लिए, कई रेसेस होती हैं घोड़ों की, हॉर्स राइडिंग होती है आज भी। हालांकि गाड़ियां हैं मौजूद, लेकिन फिर भी एक स्टेटस सिंबल है घोड़ा आज भी। घोड़े के बारे में मेरे सामने तो नहीं है वो हदीस के एग्जैक्ट अल्फाज, लेकिन आपको पता है हदीस में आता है ये घोड़ा जो है ना हर रोज दुआ करता है सुबह को, और दुआ में कहता है कि अल्लाह ताला मेरे मालिक के दिल में मेरी मोहब्बत सारी चीज़ों की मोहब्बत से ज़्यादा कर दे, उसके बीवी बच्चों की मोहब्बत से, उसकी दूसरी चीज़ों की मोहब्बत से ज़्यादा मेरी मोहब्बत डाल दे इसके दिल में। सुभान अल्लाह। तो घोड़े जो है निशान लगे हुए, उम्दा घोड़ों की मोहब्बत, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आज इसको आप रिलेट कर सकते हैं गाड़ी से। आपको देखा होगा कि लोगों को गाड़ियों का कितना शौक होता है, और ये ख़ास तौर पे ये मोहब्बतें मर्दों के लिए बहुत ज़्यादा हैं। देखें औरतों की, फिर खजानों की, फिर खैल मुसव्वमा। गाड़ी कौन सी गाड़ी ब्रांडेड आज के वक्त में, जैसे उम्दा गाड़ियां कौन सी हो सकती हैं निशान लगी हुई, मतलब कौन ब्रांड नेम्स, जैसे कि फरारीज हैं और बड़ी बड़ी, और क्या उनकी नाम होते हैं, मुझे अब इतने नाम नहीं पता, पोर्श है कि क्या क्या, मतलब आगे से आगे वो बढ़ती जा रही हैं कि लोगों को होता है कि हाय। जब देखें सुभान अल्लाह, एक चीज़ होती है ना, मैंने आपको कहा कि कोई चीज़ की मोहब्बत, अब मेरे पास एक गाड़ी है मुझे उससे मोहब्बत है, वो एक अलग चीज़ होती है, लेकिन एक है इस ख्वाहिश की मोहब्बत। कैसे? इस ख्वाहिश की मोहब्बत कि हम जा रहे हैं सड़क के ऊपर भी, तो आपने देखा होगा जिनको गाड़ियों में बहुत दिलचस्पी होती है, वो कहीं देखते ओ वाह वो गाड़ी, ओ देखा ये वो फलां गाड़ी है, पता है ये कितने की है, और वो मुड़ मुड़ के उस गाड़ी को देखते हैं, ऐसे होता है ना। तो गाड़ियों की मोहब्बत इंसान को ये भी मुजयन कर दी गई है उसके लिए, यानी जो सवारियों की मोहब्बत है, और वो खास तौर पे इस सवारी जैसे घोड़े की, और आज के जमाने में गाड़ी उसको कह सकते हैं आप। और आप ये देखें कि जरूरी नहीं है सारी मोहब्बतें सबके दिल के अंदर एक बराबर हो, किसी के लिए कौन सी चीज़ ज्यादा है, किसी के लिए मसलन है कोई औरत है वो कहती है कि नहीं मुझे तो ये गाड़ियों वगैरह का तो मुझे कोई शौक नहीं, लेकिन बेटों का है मुझे, खजानों का है, ज्यादा हूँ हमारे पास इस, ये हर एक कोई चीज़ इसके अंदर किसी के लिए ज्यादा हो सकती है, किसी के लिए कोई उसकी टेम्पटेशन नहीं हो सकती, मगर ज्यादा ये मर्दों के लिए ये टेम्पटेशन है। अच्छा एक हदीस आती है बड़ी प्यारी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीन किस्में बताई हैं घोड़े की, और उसी से हम गाड़ियों की भी किस्में देख सकते हैं। फरमाया एक घोड़ा किसी शख्स के लिए बायसे अजर है, एक घोड़ा बायसे सतर है, और एक घोड़ा वबाल है यानी बायसे अजाब है। ये तीन किस्में हैं घोड़ों की। कैसे? अजर का भी बायस हो सकता है घोड़ा, सतर का भी बायस हो सकता है, और अजाब का भी, ये कैसे? फरमाया जिस घोड़े को उसने अल्लाह के रास्ते में बांधा हो वो उसके लिए बायसे अजर है, उसको वो किसी चरागाह या बाग में चरने के लिए छोड़ दे तो जितनी दूर वो चरने के लिए जाएगा उसके लिए उतनी नेकियां लिखी जाएंगी, और वो पानी पीने के लिए या लीद करने के लिए जितने कदम चलेगा उसके लिए इतनी नेकियां लिखी जाएंगी। यानी एक बंदे ने घोड़ा बांधा हुआ है जिहाद फी सबीलिल्लाह के लिए, या नेकी के और कामों के लिए वो उसके ऊपर सवारी करके जाता है, तो वो जो घोड़ा है वो उसके लिए बायसे अजर है। उसकी इवन जो उसका चारा है, उसकी लीद है, उसका पानी पीना है, वो सब उसके लिए बायसे अजर है। आप इसको मिसाल रखने, मसलन एक गाड़ी आपके पास ऐसी हो जिसमें आप अल्लाह के दीन के काम के लिए उसको यूज़ करते हो, मसलन कहीं मस्जिद जाना है, कहीं दुरूस पे जाना है, आप बहनों को लेकर जाती हैं उसमें राइड देती हैं, आप जितनी वो आपकी गाड़ी चलेगी पेट्रोल खर्च हो रहा है, जितनी उसकी टायर की रोटेशन हो रही है, जितने कदम वो गाड़ी चल रही है, जितनी उसकी रिपेयर पे, उसके कोई भी मेंटेनेंस के ऊपर पैसे लग रहे हैं, वो सब अजर का बायस है। दूसरा वो घोड़ा है जो इंसान के लिए बायस सतर है, यानी इंसान के लिए ना तो कोई उसके अंदर सवाब है, ना उसके अंदर कोई गुनाह है, कोई भी दोनों में से चीज नहीं, बस उसके सतर है उसके लिए। ये वो घोड़ा है जिसको उसने लोगों से मुस्तगनी होने के लिए, यानी सवाल से बचने के लिए बांधा हुआ है, कि यानी आप इंसान ऐसी चीज होती है ना कि अपनी जरूरियात के लिए सवारी करना है, उसने कहीं जाना है आना है, जॉब पे जाना है, मतलब गाड़ी को ले ले मिसाल, घोड़े को नहीं समझ आती तो ग्रोसरी करनी है, आपने बच्चों को स्कूल लेके जाना है, आपने जॉब पे जाना है, अपनी जितनी भी जरूरियात आपकी हैं वो सारी आप उससे पूरी करते हैं, तो सतर है, किसी से मांगना नहीं पड़ता, किसी को कहना नहीं पड़ता, तो इसलिए उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन उसमें कोई अजर भी नहीं है। ठीक है, तीसरा वो घोड़ा है जो के भाई से अजाब है, ये वो घोड़ा है जो इंसान ने तकबर के लिए, रयाकारी के लिए बांधा हुआ, या हदीस में आता है मुसलमानों से दुश्मनी की वजह से बांधा हुआ। तो क्योंकि पहले जमाने में भी घोड़े इसलिए भी रखा करते थे फखर के लिए, बहुत देखो मेरे पास कितना उम्दा घोड़ा है, जैसे बिल्कुल आज है गाड़ी, कुछ गाड़ी तो हमारी जरूरत के लिए होती है, और कोई गाड़ी सिर्फ हमने शो ऑफ के लिए खड़ी की होती है कि लोग देखेंगे उनको पता चले ये फलानी गाड़ी है, आपकी जरूरत नहीं है, और सबको पता है अपनी अपनी हम गाड़ियों पे नजर दौड़ाएं कि कौन सी गाड़ियां हमारे पास जो सिर्फ शो ऑफ के लिए, वो हमने कभी कभी निकालनी होती है लोगों को दिखाने के लिए, बस कहीं खास जगह पे जाना होता है तो फिर हम वो निकालते हैं। ठीक है, गाड़ी ना बड़ी लेने में कोई मसला, ना छोटी लेने में कोई मसला, ना एक्सपेंसिव लेने में कोई मसला, कि आपका नहीं गाड़ी जो है ना बहुत बुरी और बिल्कुल थकी हुई गाड़ी ऐसी होनी चाहिए जो बार बार रुक जाए कहीं जाके, तो तब मैं बड़ी दीनदार हूँ, देखो ना मैंने गाड़ी पे कोई स्पेंडिंग नहीं की, ये कोई अकलमंदी नहीं। सवारी को बुरा नहीं कहा गया, अगर आप गाड़ी इसलिए ले रहे हैं कि अच्छी गाड़ी होगी ना तो मुझे दिक्कत नहीं होगी, प्रॉब्लम नहीं होगी, ये इतना इसके ऊपर मेंटेनेंस का खर्चा नहीं होगा, इस गाड़ी को रखने से क्या फायदा, तो अगर बड़ी गाड़ी है क्योंकि मेरा खानदान बड़ा है, वो छोटी गाड़ी में पूरा नहीं आ सकता, हमने कहीं जाना हो तो फिर हम कैसे जाएं, तो फिर आप वो बड़ी गाड़ी लेते हैं, या अगर महंगी गाड़ी ले रहे हैं सिर्फ इस वजह से कि ये ज्यादा देर पा रहे, ज्यादा देर चले, दूसरी गाड़ी सस्ती ले लेंगे तो बार बार वो खराब होगी, इस तरह के ख्याल आते हैं तो ठीक है उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अगर गाड़ी इसलिए ली हुई है कि ये फलां गाड़ी है ना इसका नाम इतना है, जब कोई देखेगा हमारे गैराज में खड़ी हुई तो उसकी आंखें फिर फटी की फटी रह जाएंगी, पता चले किसी को पता तो चले कि इन्होंने पोर्श ली हुई है, किसी को पता तो चले इन्होंने फलां गाड़ी ली हुई है, तो ये जब आ जाता है ना तो ये है वो सवारी जो बवाल है, इसीलिए आप देखते हैं उन गाड़ियों को तो लोग रोज रोज निकालते भी नहीं, उनको बस शो पीस के तौर पे खड़ा किया होता है, अब शो पीस है वो बस दिखेगा, देख देख के खुश होते जाएंगे और लोग भी देखें, जब दिखावा करना है तो वहां पे लेके भी जाते हैं, वो रोजमर्रा के लिए नहीं यूज होती। इस तरह आप देखें अल्लाह के रास्ते में हमारी कितनी सवारी यूज होती है कि हमारे लिए बायस अजर बन जाए, हम मस्जिद उस पे जाते हो, हम दरूस पे जाते हो, हम किसी को हेल्प कर देते हो उसमें, हम किसी बीमार है उसको लेके चले जाते हैं, किसी को कोई ज़रूरत है उसकी ज़रूरत पूरी कर देते हैं, किसी को साथ बिठा लेते हैं, आप कहीं नेकी के काम के लिए जा रहे हैं मसलन आप दर्स पे जाती हैं, आप अपने साथ किसी को राइड दे देती हैं, इसमें क्या हर्ज है, लेकिन हम उसमें भी बुखल करते हैं, हम कहते हैं नहीं वो किसी को क्यों साथ बिठाऊं, अपनी गाड़ी है ना उसके पास जाए उसके अंदर, इतना बुखल, हालांकि खाली आप गाड़ी लेकर जा रहे हैं, उसके बैठने से पेट्रोल ज़्यादा नहीं आपका खर्च होगा, उसके बैठने से गाड़ी के फूल नहीं उतरेंगे, लेकिन इतना हमारे अंदर बुखल है, इसी गाड़ी को हम अल्लाह के रास्ते के लिए यूज कर सकते हैं, इस तरह के हम हमेशा जब कोई किसी जगह जाना हो, बहुत सारे लोगों ने जाना है, आप किसी को पूछ लें कि भाई आपने चलना है, ताकि आपको नेकी मिल जाए, आपकी सवारी दूसरे के काम आ जाए, और सिर्फ दर्स में जाने की बात नहीं है, कहीं जाना है आपने किसी को राइड दे दी, आपने किसी दोस्त को किसी हमसाई को किसी को पूछ लिया, तो कितनी आपकी, आप सोचें कि आपकी सवारी बायस अजर बन गई आपके लिए, किसी की मदद करने की वजह से, अल्लाह के रास्ते में यूज करने का मतलब सिर्फ मस्जिद जाना नहीं है, किसी की भी मदद करना, किसी के भी काम आ जाना, किसी की भी किसी दीनी मजलिस में चले जाना, तो ये चीजें इंसान को समझनी चाहिए कि किस तरह मेरी सवारियां भी मेरे लिए बायस अजर बन सकती हैं और बायस बवाल भी बने, आपने देखा ना अब इसमें भी दोनों आपने एंगल्स देख लिए, जैसे कि आपने निसा में दोनों एंगल्स देखे हैं, बेटों में भी दोनों एंगल देखे, कहाँ सदका जारिया बन जाए कि इंसान खुद अपनी उतनी नेकी नहीं कर सकता। मेरे पीछे से मेरी औलाद होगी ना, मेरे बेटे होंगे, इमाम बनेंगे, दीन का काम आगे लेके चलेंगे, जैसे हजरत जकरिया अलैहि सलाम ने क्यों बेटे की ख्वाहिश की थी, क्योंकि बेटा मांगा था कि उन्होंने फरमाया था मेरा वारिस बने। वारिस नहीं, उनकी कुछ जायदादें थोड़ी थी जिसका वारिस बनना। अंबिया क्या छोड़ते हैं विरासत में? इल्म। उनको ये था कि मेरे बाद दीन का आगे लेके चले। ऐसी ख्वाहिशात और इसके लिए बेटे चाहना, तो वो तो इंसान के लिए अजर ही अजर। लेकिन अक्सर इस चीज़ के लिए तो नहीं चाहे जाते, इसके लिए चाहे जाते हैं लोग देखेंगे कि इसके इतने बेटे हैं, कल को मेरा बिजनेस संभालेगा, कल को हमारी जायदादें इतनी हैं, कौन पीछे से देखेगा? ये बेटियां तो जो कहते हैं पराया माल है, ये तो हमारे बेटों के ही, तो उसके लिए बेटे नहीं होंगे तो फिर क्या, हमारे नाम लेवा कौन होंगे, हमारा नाम आगे कैसे चलेगा? ये ख्वाहिशात है बस। कम ही लोगों की ख्वाहिश कोई होती कि बेटा होगा तो फिर ये दीन का काम ऐसे करेगा, इमाम बनेगा, ऐसा कोई दीन की खिदमत करेगा, ये बहुत कम होता है। तो दोनों एंगल हो गए ना इसमें, और सोने चांदी के ढेरों में भी मैं आपको बता दिया, ये होंगे तो हम अल्लाह के रास्ते में खर्च करेंगे, हम ज्यादा ज्यादा खर्च करें। और दूसरी तरफ यही इंसान को इतना गाफिल भी कर सकते हैं। और इसी तरह घोड़े के भी मैंने आपको ये हदीस बता दी। और फिर और क्या चीज है? वल अनाम, और कैटल, गाय है, ऊंट है, भेड़ बकरियां है। शायद आप या मुझे इतना ज्यादा इन चीजों का नहीं समझ में आए, क्योंकि हमारे लिए ये चीजें क्या है, हम कहते हैं हमने क्या करने है अनाम मवेशी, लेकिन आज की कैटल क्या है, जो इन्वेस्टमेंट्स हैं हमारी, ये अनाम भी ना इन्वेस्टमेंट होते थे, मवेशी जानवर माल होते थे, आज भी माल ढोर 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 डंगर किस तरह से कहते हैं ना वहां पे, ये गांव वगैरह में उनके लिए तो ये माल है, वो इसको माल ही कहते हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ी चीजें होती हैं, और उनकी सेवा वो कितनी करते हैं, गाय वगैरह हैं, ये चीजें हैं, अभी तक भी उनके साथ कितने इन्वॉल्व होते हैं, कभी उनको नहला धुला रहे हैं, कभी दूध उनका ले रहे हैं, कभी वो बच्चा देने वाली है तो उसकी तरफ नजर है कि क्या बच्चा होता है, तब बिल्कुल उनका ज़हन उसके अंदर ही लगा रहता है, और उनके ऊपर बड़ा फख्र होता है कि जो हमारे पास कितनी बकरियां हैं या कितने हमारे पास गाय भैंस ये वगैरह। पर आज के दौर के अंदर आप देख लें इन्वेस्टमेंट्स हैं, स्टॉक मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, फिर उनका ज़हन कितना लगा रहता है उसमें, हर वक्त वो उसी को सोचते रहते हैं। इसी तरह वल हर्फ, खेती, जमीन, आज आप जमीन में देख लें, आज भी जो जमीनें हैं ना इंसान को इतनी प्यारी हैं कि वो जमींदार कहलाते हैं, लैंड लॉर्ड कहलाते हैं, लैंड ओनर नहीं कहलाते, लैंड लॉर्ड्स ना, कितनी बड़ी अपने आप को चीज समझते हैं, जागीरदार, तो जागीरें हैं जिसकी जी। तो आज के वक्त में भी जमीनें, चाहे वो खेती की फॉर्म में है, चाहे वो वैसे ज़मीनें हैं, वो इंसान को बहुत उनकी ख्वाहिश भी महबूब होती है कि इतना मेरे पास हो, ऐसे हो, मेरी ज़मीन वहां से वहां तक हो। तो ये चीज़ें हैं, इनकी हो सकता है फॉर्म्स थोड़ी बहुत आज के वक्त में थोड़ी चेंज हो गई हो, जो शहरी लाइफ है उसके मुताबिक हो गई, मगर शहवात है ना, बहुत सारी ख्वाहिशात उनके अंदर से ये मेन बताई गई। वैसे तो अल्लाह ताला ने फरमाया इन्ना जालना माल अलर्दी जीनत अल्लाह जीना बलुआकुम, ये जो जमीन पे जितना कुछ है ना, ये हमने जीनत बना दिया, ये इसको खूबसूरत बना दिया इंसान के लिए, ताकि इंसान को आजमाया जाए। तो अब ये जवाब है इस चीज का कि आप कहेंगे फिर अल्लाह ने डाली क्यों ये मोहब्बत, फिर अल्लाह ने क्यों इतना हमारे लिए इसको ब्यूटिफाई कर दिया, इस मोहब्बत को भी ब्यूटिफाई कर दिया, क्यों किया, हम इतनी मुसीबत में ही ना पड़ते। लेकिन ये इसलिए किया ताकि आपकी आजमाइश हो। देखिए ना, जिस को भूख ही नहीं लगती, मसलन कोई ख्वाहिश नहीं, उसकी भूख ही नहीं है, उसका रोजा रखना भी कुछ नहीं है, क्या अजर है उसके रोजे रखने में, वो उसको तो खाना खाना ही नहीं, उसकी भूख ही नहीं है। जिस इंसान को किसी औरत की ख्वाहिश ही नहीं है, उसके अंदर है ही नहीं वो चीज, वो जिना से अगर बच जाता है तो वो कौन सा उसके लिए बड़ा कमाल की बात है। देखिए, टेस्ट होता ही वहां है जहां पे आपके लिए कोई चीज बहुत महबूब हो, आपको बहुत अच्छी लगती हो, वहीं तो टेस्ट है,
और आपको कोई चीज की जरूरत ही नहीं, कोई चीज पसंद ही नहीं, तो फिर उस आपका क्या टेस्ट है? मतलब औरतों के लिए औरतें कोई टेस्ट नहीं, उनके लिए उनके लिए कोई अट्रैक्शन नहीं। हाँ, मर्दों के लिए वो सबसे बड़ा इम्तिहान बन गई, वही चीज क्योंकि उनके लिए अट्रैक्शन है उसके अंदर। तो ये चीज अल्लाह ने इसलिए मुजयन की, इम्तिहान के लिए अल्लाह ने आजमाना है। दूसरा, किस लिए अल्लाह ताला ने मुजयन कर दी? क्योंकि अगर अल्लाह इनकी मोहब्बत को मुजयन ना करता ना, तो ये दुनिया का निजाम नहीं चल सकता था। वो कैसे? इसलिए कि देखें, अगर ये इन चीजों की ख्वाहिश ही ना कोई होती इंसान को, तो कौन शादी करता? कोई भी नहीं करता। कौन बच्चे पैदा करने का झंझट करता? ना कोई औरत बच्चे पैदा करने के लिए तैयार होती। ये मोहब्बत है ना कि नहीं मेरे पास, वो तो कितना ही कुछ से गो थ्रू करती है इंसान। आदमी के अंदर मोहब्बत है तो वो परवरिश करता है, वो गधे की तरह सारा दिन काम करता है और लाके अपनी बीवी बच्चों पे खर्च करता है, क्योंकि इनकी मोहब्बत दिल में डाली ना, औरत की भी और औलाद की भी। फिर ढेर सोने के, ये इसकी मोहब्बत ना होती तो कोई वर्क हार्ड ही ना करता। सवारियां हैं या ये कैटल है, इसको रेज करना, खेती बाड़ी करना, तो कोई भी ना खेती बाड़ी करता, आराम से रहते, हमें कोई जरूरत नहीं, तो कैसे दुनिया का निजाम चलता? तो अल्लाह ताला ने दुनिया का निजाम चलाने के लिए इन चीजों की मोहब्बत रखी है, वरना कोई आदमी शादी ना करता, वरना कोई आदमी बच्चे ना करता। ज़ालिका मताउल हयाति दुनिया, बस ये बात है जो समझने की है सारी बातों के बाद। कि देखो, तुमने देख ली ना ये सारी चीजें, अब आपको एक पिक्चर दिखा दी गई, ये सारी चीजें वाकई मोहब्बत हमारे दिलों के अंदर है। किसको अच्छा नहीं लगता मेरा एक वेकेशन होम भी होना चाहिए, उसको भी ड्रीम करते हैं। हाँ, एक घर वैसे यहाँ हो ना, तो एक वो हर जैसे जमीन है कि एक वहां पे भी होना चाहिए। अच्छा, मेरा बड़ा घर होना चाहिए, अच्छा मेरे पास इतनी इन्वेस्टमेंट भी होनी चाहिए, अच्छा फिर मेरे पास ये फलानी गाड़ियां होनी चाहिए, क्या जबरदस्त, इतना सोना चांदी हो, ऐसे हो, बच्चे हो, फलां। कितनी इंसान के अंदर ये ख्वाहिशात होती हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे ये सिर्फ मताउल हयात दुनिया। मता किसको कहते हैं? मता वो चीज जो बहुत टेम्प्ररी होती है, बहुत थोड़ी देर के लिए एंजॉयमेंट। अल्लाह ताला ने बता दिया ये डिजायर्स हैं इंसान के अंदर, ये ख्वाहिशात की मोहब्बत है इंसान के अंदर, और ये उसकी फितरत में है। लेकिन ये याद रखना कि इसमें ही ना खो जाना, ये याद रखना कि इनमें पढ़ के अल्लाह को ना भूल जाना। और वाकई ये अपने आप के अंदर इतना कंज्यूम कर लेती हैं, चाहे वो खेती है, जमीनें हैं, चाहे वो मवेशी है, गाड़ियों की मोहब्बतें इतनी इंसान को क्रेजी कर देती हैं। वो सारा वक्त गाड़ियां ही डिस्कस करते हैं, जिधर बैठे गाड़ी, जिधर बैठे गाड़ी, वो उनकी जैसे दुनिया है गाड़ी ही है। फिर आप देखें ये जो सोने चांदी के ढेर हैं, पैसे के ऊपर कितनी बातचीत होती है, खासतौर पर मर्दों की मजलिसों के अंदर पैसा डिस्कस कितना होता है। यहाँ पे मैंने लगा दिया, मेरे पास इतना हो गया, मैंने तो ये बना लिया, मैंने तो इतना कमा लिया, मैं तो मेरी तो इतनी पे है, फलां है। इस तरह बच्चे हैं, इस तरह औरतें हैं, औरतों की बातें आदमियों के अंदर कितनी डिस्कस की जाती है। सिर्फ वो हूरों की बातें करके या और औरतों की बातें करके ही खुश होते रहते हैं और हंसते रहते हैं। उनके पास नहीं है, लेकिन इतनी उनको इस चीज से खुशी हासिल होती है। अब देखें, अब किसी आदमी को की बाछें खिल जाती हैं चार शादियों की बात करने पर, इतने खुश होते हैं। ये हैं चीजें, ये रियलिटी है, और इसमें कोई ये ना कहे कि हाँ जी फलां कोई नेक है तो कहे माने मुझे तो कुछ भी नहीं, मैंने तो बस अल्लाह अल्लाह करना है मुझे तो नहीं। ये अल्लाह ने एक नेचुरल चीज रखी है, नथिंग रॉन्ग विद इट। रॉन्ग कब होता है? जिस वक्त के इंसान का सारा वक्त और जिंदगी बस इसके अंदर ही बसर हो जाती है, सारी जिंदगी बस इन्हीं चीजों के चक्रों में ही वो लगा रहता है, इनके गिर्द घूमता रहता है। तो बता दिया गया ये फानी है, ये फानी है, ये फानी है, ये मताउल हयात दुनिया है, कुछ नहीं है, थोड़े दिन का सामान है, जो इतना खूबसूरत अभी लग रहा है ना कि इसकी बातें करके भी तुम एंजॉय करते हो ना, ये कुछ भी नहीं है, ये बस खत्म हो जाने वाली चीज है।
और इतनी प्यारी एक हदीस, मुझे बड़ी पसंद है वो, आपके सामने रखूंगी कि ये क्या चीजें हैं, ये सारी, ये जो मताल हयात दुनिया है ना, ये क्या है। अबू हुरैरा फरमाते हैं कि एक दफा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझको इरशाद फरमाया है, अबू हुरैरा मैं तुझको दुनिया और जो कुछ दुनिया में है वो ना दिखाऊं। मैंने अर्ज किया हाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा हाथ पकड़ा और मदीना के बाहर एक जंगल सा था उस तरफ चले गए। वहां पे एक जगह खोपड़ियां पड़ी हुई थी, पखाना था, हड्डियां थी, चीथड़े थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू हुरैरा ये खोपड़ियां देखते हो ना, ये भी ऐसी चाहत किया करती थी जैसे तुम करते हो। आज देखो कैसी हो गई कि इन पे चमड़ा भी नहीं है, स्किन भी नहीं है, ऐसे स्कल्स पड़े हैं। अब चंद दिन में ये राख हो जाएंगी। और ये पखाना देखते हो ना, ह्यूमन वेस्ट, ये इनकी गिजा थी, पता नहीं कहाँ कहाँ से कमा के खाया था। आज ऐसा हो गया कि तुमको इससे नफरत है, इंसान देखना भी नहीं चाहता उसको। और ये चीथड़े जो है ना, रैग्स, ये इनके लिबास थे, आज इनको हवा उठाए उड़ाए फिर रही है। और ये नलियां जो हैं उन चौपायों की हैं जिन पे चढ़ के ये शहर शहर घूमा फिरा करते थे। अबू हुरैरा फरमाते हैं ये सारा मंजर देख के हम खूब रोए और फिर वहां से लौटे। सुभान अल्लाह, यानी ये उन्होंने याद किया और अपने आप को याद कराया। देखें जब अपने आप को इंसान याद कराता रहता है ना, ज़ालिका मताउल हयात दुनिया, मैं तो कहती हूँ हम कहीं लिख के ना इसको लगा ले, ज़ालिका मताउल हयात दुनिया, ताकि हमें याद रहे ये बच्चे हैं ना, ये दुनिया का थोड़ा सा सामान है बस, ये घर हैं, ये गाड़ियां हैं, कि जिनके ऊपर हम इतना फख्र कर रहे हैं ना, वे फूले नहीं समाते, इनकी बातें डिस्कस करना हमारा महबूब मशगल है, जिस मजलिस में बैठते हैं बस इनके जिक्र छेड़ के बैठ जाते हैं, इतना बना लिया, इतना कर लिया, ये हो गया, वो फलानी गाड़ी मैंने ली, फलाना ये, ओहो ये तो ज़ालिका मताउल हयात दुनिया है, इसके पीछे इतने रीजे जा रहे हो, तुम्हें तो अल्लाह ही भूल गया। अल्लाह अकबर, ये कितनी अखीर चीजें, ये कितनी जल्दी खत्म हो जाने वाली चीजें, ये हैं, यहाँ की जरूरियात जरूर हैं, इनको भी हासिल करना है, मगर ये वो टूल्स हैं जिनसे आखरत बनानी है। जैसे आप टूल लेते हैं ना, मसलन आपने हथौड़ी ली, आपने आरी ली, आपने ये कील वगैरह लिए, ये लिए, आप उससे एक चीज बनानी है, आपने कोई घर बनाना है मसलन, अब वो जो टूल्स हैं आप उनको ही लेके बैठ जाएं, और वो आप हथौड़ी को ही आप साफ कर रहे हैं, उसको निखार रहे हैं, उसको संवार रहे हैं, उसको बड़े प्यार से रख रहे हैं, पर ओ भाई इससे तो घर बनाना था, असल चीज तो घर बनाना था ना, अब घर बनाना छोड़ के तो आप टूल की सेवा में लग गए, कितनी बेअक्ली की बात है ना। इन चीजों को इस्तेमाल करके आखरत बनानी थी इन बच्चों को, इन आदमी है तो औरतों के जरिए, दीनदार औरत के साथ वो उसकी मुआविन बने बनती है दीन में, इन्हीं गाड़ियों को लेके अल्लाह के दीन के लिए भगाना था, इन्हीं इन्वेस्टमेंट्स के साथ, इसी जमीन के साथ अल्लाह के दीन के काम को करना था, लेकिन क्या किया, हम तो उनमें ही खो गए। तो अल्लाह ताला ने इन सब चीजों की रियलिटी सिर्फ चार अल्फाज में बता दी, ज़ालिका मताउल हयात दुनिया, वल्लाहु इंदहु हुस्नुल मआब, जो अल्लाह के पास है ना वो बहुत अच्छा ठिकाना है, वो बहुत अच्छी लौटने की जगह है, आखरत इससे बहुत ज्यादा अच्छी है। ये दुनिया जो है, यहाँ पे जितनी नेमतें हैं ना, इन सब के साथ परेशानियां लगी, आजमाइशें लगी, इन सब के साथ कोई ना कोई मसले जुड़े हैं। ये वो फूल है जिसके साथ कांटे हैं, फूल तो है, अब औलाद भी अच्छा है, रिस्क होना चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए, सवारी, सबके साथ कांटे हैं। आप देखें औलाद के मसाइल इंसान को कहां से कहां पहुंचा देते, उसको ऑक्यूपाई करके रख लेते। गाड़ियां हैं उनके भी कोई मसले, अब गाड़ी ले भी दी है तो अब उसको कभी कहीं खराब हो गई है, कभी उसको वर्कशॉप लेके जा रहे हैं, कभी उसकी ये रिपेयर है, कभी उसका ये भी एक टेंशन लोगों को कितनी हो जाती। फिर आप देखें जितने बड़े बिजनेसमैन हैं हार्ट अटैक उनको ही होते हैं, कभी आपने मजदूरों को नहीं देखा होगा जो झोंपड़ियों में रहते हैं कि उनको हार्ट अटैक हो रहा है। ये जो खजानों के वो हैं कि भाई बड़े बिजनेस टाइकून है, आप देखें वो उनके मसले ही और ज्यादा है। आप सोचते हैं कि इनके मसले नहीं है, लेकिन वो सबसे ज्यादा मसाइल में होते हैं, सबसे ज्यादा उनको टेंशन होती है, उनको तो अपने बीवी बच्चों के लिए भी टाइम नहीं होता। ये उनकी हालत हो चुकी होती है कि वो जो पैसा कमा रहे थे उसको भी इंजॉय नहीं कर पाते।
तो इन सब के साथ मसाइल हैं, इनके सब के साथ आजमाइशें हैं, और ये टेम्प्रेरी हैं। जबकि जो अल्लाह के पास है ना, वो हुस्नुल मआब है, वो परमानेंट है, वो अच्छा लौटने का ठिकाना है। उसमें साथ मसाइल नहीं लगे हुए, उसमें साथ आजमाइशें नहीं है, उनके साथ कोई मसले नहीं होंगे। जो वहां की सवारियां होंगी, वहां की भी सवारियां, उड़ने वाले ऐसे ऊंट होंगे जिनसे तो पलक झपकने में कहां से कहां पहुंच जाएंगे, ऐसे बागात होंगे जिनका एंड ही नजर नहीं आएगा, इतने बड़ी बड़ी एम्पायर्स होंगी, स्टेट्स जो या क्या कह लें, 2000 साल की मसाफत से इंसान तक देख सकेगा अपनी जन्नत को, अदना जन्नती को भी जो ये दुनिया है और इससे 10 गुना तक आगे इतना मिलेगा। इतनी बड़ी अदना की बात है, लेकिन उसमें मसले नहीं होंगे, प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। जो हूरें होंगी वो इंसान के लिए प्रॉब्लम नहीं होंगी, वो उसके लिए एक हेडेक नहीं बनेंगी, वो लड़ाई झगड़े नहीं करेंगी। जो वहां पे अगर इंसान को औलाद की ख्वाहिश होगी, जो दुनिया में बे औलाद है वो कहेगा मैं मुझे वहां पे अल्लाह औलाद चाहिए, अल्लाह उसको औलाद दे देगा कोई किसी कोई पेन के बगैर, और वो औलाद आजमाइश नहीं होगी। फिर ढेर सोने चांदी के यहाँ पे है ना, वहां पे तो जन्नतें ही सोने और चांदी की हैं, एक जन्नत सोने की एक चांदी की, उसकी हर चीज सोने की, उसकी हर चीज चांदी की, सुभान अल्लाह। तो हुस्नुल मआब सबसे बड़ी बात ये, वो इतना अच्छा ठिकाना, वो टेम्प्रेरी वाला नहीं है। तुम किस में पड़ गए, इसमें ही खो गए। ये तो अल्लाह ने तुम्हें थोड़ा सा एक एक ट्रेलर दिखाया था, ट्रेलर दिखाया था कि देखो ये दुनिया को देखते हो ना, सोचो कि आखरत के में अल्लाह की नेमतें कैसी होंगी। ये ट्रेलर है। कुल कह दीजिए, ए नबी आप इनसे कह दें, आ उनबी हुकुम, क्या मैं तुम्हें खबर दूं, अहम खबर, क्या ये आता है ना नबा, जैसे हम कहते हैं, वैसे तो खबरें लगती हैं लेकिन जूं ही आता है ब्रेकिंग न्यूज तो हम फौरन अलर्ट हो जाते हैं, क्या ब्रेकिंग न्यूज आ गई, अहम खबर, फौरन चलने लगता है। तो बहुत अहम खबर है, क्या बी खैर मिन ज़ालिकुम, बेहतर इससे। इंसान सोचता है अच्छा, ज़ालिकुम, कुम की जमीर किस तरफ जा रही है, कुम यानी इन सारी चीजों, ये जो 6-7 चीजें बताई गई है ना, इन सबसे बेहतर जितनी ख्वाहिशात हैं इनकी, जो मोहब्बत है, सबसे बेहतर चीज ना बताओ। बंदा एक्साइटेड हो जाता है, अच्छा इससे भी कुछ चीज अच्छी हो सकती है, मुझे तो यही चीजें बड़ी अच्छी लगती है, इससे भी अच्छा कुछ हो सकता है, हाँ इससे भी अच्छा है। लेकिन वो लिन्नास नहीं है, लिल्लदीन तकौ है, सबके लिए नहीं है, वो तो सबकी थी ना, सबके लिए मुजयन कर दी गई थी। ये है तकवा वाले के लिए, लिल्लदीन तकौ इंदा रब्बिहिम, उनके रब के पास, रब के पास। वरना ये भी हो सकता था, लिल्लदीन तकौ जन्नातुन तजरी, लेकिन जब कह दिया गया ना रब के पास, तो वो जैसे बीबी आसिया की दुआ याद है, रब्बी बनी लिया इंदक बैतन फिल जन्ना, है मेरे रब अपने पास जन्नत में मुझे घर अता फरमा। तो अल्लाह के पास होने की बात ही अलग है कि अल्लाह के करीब होना, अल्लाह के कुर्बत, और जो कुर्बत सबसे ज्यादा किनको मिलेगी, जो जन्नतुल फिरदौस में होंगे, जो सबसे आला जन्नत है, जिसका छाती अल्लाह की, अल्लाह ताला का अर्श है, तो इंदा रब्बी, उनके रब के पास। अच्छा जन्नत को भी छोड़ देना, जब इंदा रब्बी ही आता है तो अल्लाह के पास होने का एहसास इंसान को कितना सूद करता है, अल्लाह के पास हो जाऊंगा। और वहां पे क्या है, जन्नत, एक जन्नत नहीं है, बहुत सारे बागात हैं, तजरी मिन तहती अल अनहार, जिनके नीचे नहरें बहती होंगी, नहरें होंगी, ऐसे बाग होंगे। बाग क्यों कहा,
वहां पे तो मोहल्लात भी होंगे, वहां पे तो नहरें भी हैं, वहां पे तो और भी कई चीजें हैं, खेमे भी हैं, तो जन्नात ही क्यों कहा गया? एक तो अरबों को ना बागात बहुत महबूब थे, ठीक है, और दूसरी चीज ये है, हर इंसान के अंदर आप देखें एक ये पता नहीं एक फितरी सी अल्लाह तला की तरफ से ये चीज है, उसको ग्रीनरी बड़ी पसंद आती है। आप देख लें कितना भी महल हो लेकिन उसके इर्द गिर्द क्या है, मट्टी धूल उड़ रही है, तो आपको अच्छा लगता है वो? कोई, हर इंसान अट्रैक्ट होता है ग्रीनरी से। आप सैर के लिए भी कहीं जाते हैं तो आप वो जो कैलेंडर्स में तस्वीरें देखते हैं या कहीं आपने वेकेशन पे जाना है, आप कौन सी जगह चूज करते हैं जो ग्रीन होती है? ग्रीनरी वहां पे बड़ी है, फिर पानी के झरने हैं, ग्रीनरी। स्विट्जरलैंड को देखते हैं तो क्या चीजें लोगों को अट्रैक्ट करती हैं वहां की? ग्रीनरी, ग्रीन है पहाड़, ग्रीन, तो इसलिए जन्नत कहा गया। समझ आई?
जन्नत क्या है? बाग, और बाग में ग्रीनरी होती है। तो अब समझ आ गई कि क्यों कुराने पाक में जन्नत कहा गया, क्यों नहीं ये कहा गया अल्लाह के पास मोहल्लात होंगे, अल्लाह के पास वहां पे नहरें होंगी, तो हमेशा जन्नत क्यों कहा जाता है? और फिर जन्नत उस बाग को कहते हैं, एक बुस्तान भी बाग को ही कहते हैं, लेकिन जन्नत वो बाग होता है जिसकी बाड़ होती है और जो छुपा हुआ होता है, नजर नहीं आता, ये जन्नत भी नजरों से ओझल है। इसमें नहरें बह रही होंगी, और किस चीज की नहरें होंगी? पानी की भी होगी, दूध की भी होगी, शहद की भी होगी, शराब की भी होगी। खालिदीन फीहा, उसमें हमेशा रहने वाले। हम अब कहीं ऐसी किसी जगह पे चले जाना जो बड़ी अच्छी हो दुनिया में, आए तो जब वहां से आने लगते हैं तो कहते हैं आए काश यहीं पे हमारा घर होता, कितना मजा आता ना। उनकी कहा यहीं पे कहीं किसी तरह, यहाँ पे नहीं हम मूव हो सकते, लेकिन हम नहीं हो सकते वहां पे, हम वेकेशन पे जाते हैं थोड़े दिन बाद वापस आ जाते हैं, घर नहीं बना पाते वहां पे, लेकिन जन्नत वो जगह है, खाली दीना फिया, देखो कोई निकालेगा नहीं वहां से। सबसे मजे की ये बात है, वो टेम्परेरी नहीं है, वो मता नहीं है, वो खाली दीना फिया। वह अजवाज मुतहरतुन, और बीवियां या जोड़े पाकीजा, मर्दों के लिए जो बीवियां होंगी वो ऐसी होंगी जो पाक होंगी। पाक कैसे? जिस्मानी तौर पे भी पाक, यानी ना पसीना है, ना नाक बहती है, ना आंखों में कोई कीचड़ आता है, ना कोई फालतू बाल होते हैं, ना कोई इस तरह की कोई चीज नहीं, साफ सुथरी पाक। और दिलों में भी पाक, दिलों में हसद नहीं, कीने नहीं, झगड़े नहीं आदमी के साथ। जुबान भी पाक, जुबान पे शिकवे शिकायत नहीं, जुबानों के ऊपर ताने नहीं, कोई ऐसी बातें नहीं जो दूसरे को तकलीफ देने वाली हो। और इसी तरह पाक में ये भी है कि कोई खयानत नहीं करती, क्योंकि वो और भी कोई आदमी उनको अच्छे लगने लगे जन्नत के, उनको बस अपना ही शौहर अच्छा लगता है। पाक बीवियां, अब देख लेना ये क्यों दी गई, इसलिए कि आदमी को सबसे ज्यादा महबूब में पहली चीज क्या थी? निसा। औरतों को शिकायत होती है ना कि क्यों उनके लिए क्यों ऐसी बात, आप देखें उसके लिए तो सबसे बड़ी अट्रैक्शन ही वही थी, वो दुनिया में बच के आया उससे कि अल्लाह मुझे जन्नत में देगा, तो उसके लिए वो रिवॉर्ड होना चाहिए ना, वो चीज जो उसके दिमाग पे छाई रहती थी हर बात, उसने अपने आप को बचा के रखा वहां हराम से। वो सारी चीजें हलाल के अंदर जायज हैं, हद के अंदर जायज हैं, मगर जहां पे वो मैंने आपको ब्रेक वाली मिसाल बताई ना, जहां पे ब्रेक नहीं लगेगी ना, हद से निकल गई, वहां पे वो सारी चीजें इंसान के लिए मुसीबत है, तबाही है ये मोहब्बतें। फिर वह रिदवान मिन अल्लाह, सबसे बड़ी चीज जो इंसान के लिए ना वो तो है रजा अल्लाह की। पे एक दो माने इसके अंदर आप कर सकते हैं कि एक तो अल्लाह राजी कर देगा इंसान को, रिजवान यानी रजामंदी अल्लाह की तरफ से, यानी अल्लाह रजामंदी दे देगा इंसान को कि इंसान राजी हो जाए, और अल्लाह की रजा उसको मिल जाना, ये भी दूसरा मान कि अल्लाह ताला की रजा मिल जाएगी। और देखिए अल्लाह की रजा इतनी बड़ी चीज है कि सारी जन्नत एक तरफ है और अल्लाह की रजा एक तरफ है। और ये समझने ऐसे है कि मसलन आप कोई अच्छा काम करते हैं ना, तो सारी दुनिया आपकी तारीफ कर ले, वो एक तरफ होती है, और आपके माँ बाप, खासतौर पे वाले माँ बाप जो कि कभी तारीफें, पहले जमाने में ऐसे ही माँ बाप होते थे जो बच्चों की बिल्कुल कोई, अब तो थोड़ी फिर भी अवेयरनेस आने लगी है, जो कोई बच्चों की कभी तारीफ नहीं करते थे, तो सारी दुनिया आपकी तारीफ कर दे लेकिन एक तरफ वो है कि माँ बाप कह दे
आई एम प्राउड ऑफ यू। तो वो जो माँ बाप ने कह दिया ना, वो इंसान के लिए इतनी बड़ी चीज होती है कि अच्छा मेरे माँ बाप ने ये कह दिया, वो सारी लोगों की तारीफें भूल जाता है। ये बच्चे ही नहीं, सिर्फ बड़ों तक के लिए ये है कि जब माँ बाप होते हैं ना, तो उनका एक बात कह देना, उनकी तारीफ कर देना, उनका शाबाश दे देना इंसान के लिए बहुत बड़ी काम होता है। तो वहां पे जब अल्लाह ताला खुश हो जाएगा और शाबाश मिलेगी ना, तो वो क्या हाल होगा फिर, वो क्या बात होगी फिर उसकी, उस शाबाश की, कि इंसान यानी उसका कंपैरिजन किसी और नेमत से हो ही नहीं सकता। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ताला जन्नतियों से इरशाद फरमाएगा, ऐ जन्नती लोगों, वो अर्ज करेंगे है हमारे परवरदिगार, लबैक व सादैक, हम हाजिर हैं, हम तेरी जनाब में और तेरी इताअत में, भलाई तेरे हाथ में। अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा, क्या तुम राजी हो, तुम खुश हो? वो कहेंगे, अल्लाह हम राजी क्यों ना हो, यानी अल्लाह ने उनको रजा दे दी ना, वो राजी हो गए, हम राजी क्यों ना हो, तूने तो हमें वो सब कुछ अता कर दिया जो अपनी मखलूक में से किसी और को नहीं अता, अल्लाह तूने हमें इतना कुछ दे दिया, हम कैसे नहीं खुश होंगे। यानी वो इतने खुश होंगे वहां पे, उनको ये नहीं होगा कि अब कुछ और होता तो अच्छा होता, ऐसा होता, जैसे दुनिया में तो ये चीज कभी सेटिस्फेक्शन होती ही नहीं है ना, वहां पे इंसान सेटिस्फाई होगा, कंटेंट होगा। अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा, मैं तुम्हें इससे भी ज्यादा बेहतर चीज ना अता फरमाऊं? वो कहेंगे, या अल्लाह इससे भी ज्यादा अच्छी चीज कौन सी हो सकती है? अल्लाह ताला फरमाएगा, मैं तुम्हें अपनी रजा से नवाजता हूं कि आज के बाद मैं तुमसे कभी नाराज नहीं होगा। ये है रिदवान मिन अल्लाह। और रिदवान मिन अल्लाह ये बहुत बड़ी सआदत है, बहुत बड़ी सआदत है इंसान के लिए, इसलिए, लेकिन उसके लिए ये है जिसने दुनिया के अंदर हमेशा डर डर के जिंदगी गुजारी हो, जिसने हमेशा दुनिया के अंदर ये सोचा हो कि मेरा अल्लाह मुझसे राजी हो जाए। देखिए ना, एक होती है आपकी बहुत डिजायर, जिस दिन आपको वो हासिल हो जाती है कितनी खुशी होती है, आपके मसलन आपका पैशन है, आपकी सारी जिंदगी का गोल है कि आप कोई डिग्री हासिल कर लें, जब वो मिलती है तो वो ग्रेजुएशन के दिन हाल क्या होता है फिर। इस तरह जिसका जिंदगी का महवर ये था ना कि अल्लाह मुझसे राजी हो जाए, बस उसके लिए सोचें कि कितनी बड़ी खुशी की इंतहा होगी कि अच्छा अल्लाह अब राजी हो गया मुझसे। और अगर आप ये समझते हैं, लोग बहुत दफा क्वेश्चंस भेजते हैं और कहते हैं कि कैसे हमें पता चले कि अल्लाह हमसे राजी है, होती है ना एक दिल के अंदर, पता नहीं हम जो काम कर रहे हैं पता नहीं सही कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, कोई इसमें गलतियां हो रही हैं, कोई रियाकारी तो नहीं हो गई, हाय जाया तो नहीं हो गया, पता नहीं अल्लाह खुश भी है हमसे कि नाराज तो नहीं है, पता नहीं हमारा मकाम क्या है अल्लाह के पास। तो कोई दुनिया में तरीका नहीं है कि आप जान सकें कि हाँ अल्लाह मुझसे राजी ही है 100%। हाँ उलमा ने कुछ बताई है कि हाँ ये हो ऐसा हो तो वो हो, लेकिन वो मतलब एक निशानियां कह सकते हैं, लेकिन कंफर्म किसी का नहीं पता चल सकता कि अल्लाह उसे राजी है, ये कंफर्मेशन तो वहीं जाके मिलेगी। और ये उसके लिए कितनी बड़ी ये बात होगी कि अल्लाह कभी मुझसे नहीं नाराज होगा। सहाबा में तो हजरत उस्मान, सुभान अल्लाह कितने खुशकिस्मत थे ना, तबूक में जब वो अपना माल लेकर आए थे, और फिर लेकर आए और फिर लेकर आए और फिर लेकर आए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने खुश हो रहे थे कि उन्होंने जो दिए थे अशरफियां, जो दीनार या दिरहम जो भी थे, उनको उलट पुलट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर रहे थे और फरमा रहे थे आज के बाद उस्मान कुछ भी करे उसको जरर नहीं है, उसको कोई तकलीफ नहीं पहुंचेगी, आज के बाद कुछ भी करे यानी अल्लाह राजी हो गया। आप वो तो वो लोग थे जिनको अल्लाह की रजा मिल गई, हमारे में से कोई नहीं कह सकता अल्लाह राजी है हमसे, किसी का भी नहीं, आप देख के किसी का नमाज रोजा देख के किसी का कुछ नहीं आप देख के कह सकते, हम नहीं जानते दिलों के हालात क्या है। तो रिदवान मिन अल्लाह, वो जो उसकी प्यास थी ना, जो उसकी तलब थी, जो उसकी हमेशा की एक तड़प थी कि अल्लाह मुझसे राजी हो जाए, वो आज उसको मिलेगी कि अल्लाह राजी हो गया, अब नाराज होना ही नहीं उसने। और यहाँ पे दुनिया में कितना डर लगता रहता है, पता नहीं अल्लाह नाराज ना हो जाए। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला हमें भी ये अता फरमाना, या अल्लाह हमें भी ये अता फरमाना, या अल्लाह हमारे भी कान ये सुने कि तू हमसे राजी हो गया और कभी नाराज नहीं होगा, हम भी उन खुशकिस्मतों में से हूं। वल्लाहु बसीरुम बिल इबाद।
और अल्लाह देखने वाला है अपने बंदों को, अल्लाह देख रहा है तुम्हारी सारी कोशिशों को, तुम्हारी सारी मेहनतों को, तुम्हारी सारी एफर्ट्स को, अल्लाह की नजर में हो तुम। असल में इंसान जो है ना, उससे अल्लाह ताला ने फरमाया, अल्लाह ने इंसान को अजूला पैदा किया, उजलत पसंद, जल्दबाज। वो कहता मैं वेट क्या करूंगा जन्नत का, मैं यहीं पर बस मुझे जो मिलना मिल जाए, मेरे से नहीं वेट होता। हालांकि सबर करेगा तो वहां पे कितना कुछ पा सकता है। तो अल्लाह ताला फरमाते तुम अल्लाह की नजरों में हो। अब देखे अल्लाह की नजरों का एहसास इंसान को जो नेकी कर रहा है उसके लिए खुशी का बायस है कि अल्लाह तो देख रहा है ना मुझे, मैं उठ रही हूँ, बैठ रही हूँ, कंप्यूटर खोल रही हूँ, मैं अपनी किताबें खोल रही हूँ, मैं कहाँ कहाँ हराम से बच रही हूँ, मैं कहाँ कहाँ अल्लाह की नाफरमानियों से अपने आप को कैसे कैसे, मेरा दिल भी चाह रहा है लेकिन मैं बचा के रख रही, वो तो खुश होगा लेकिन जो गुनाहों में पड़ा वो भी याद रखे। अल्लाहु बसीरुम बिल इबाद, जो इन्हीं टेम्पटेशंस के अंदर ही खुबा हुआ है वो भी याद रखे, अल्लाह देख रहा है उसका कि उसका दिल किधर को लगा हुआ, उसके दिल में किस चीज की मोहब्बतें हैं, वो किस चीज के पीछे दीवाना हुआ फिर रहा है। अल्लाह को सब के ऊपर नजर है उसकी, कौन किस दौड़ में है, कौन किस रेस में है, इस रेस में हो जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहार की, रिदवानुम मिन अल्लाह की, या उस रेस में हो शहवात की। और शहवात का याद रखिए कोई एंड नहीं होता, एंडलेस होती हैं, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, और यहाँ पे सेटिस्फेक्शन है। कोई कंपेयर करना चाहे तो दोनों आयतों को कंपेयर करे, दोनों की चीजों को कंपेयर करे और देखे कि उसमें क्या मिलता है और इसमें क्या है। ये जो इल्म वाले हैं, जो इल्म में रसूख हासिल करना चाहते हैं, रासिखूना फिल इल्म, वो बैठ के इस तरह की चीजें करते हैं, वो सिर्फ फिर इतने से सेटिस्फाई नहीं होते, वो और डेप्थ में जाते हैं।